मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न सबध्यते न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न सबध्यते न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न सबध्यते। श्री भगवान कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कभी कर्म फल के पाश में नहीं बंधता। अब देखिए ये श्लोक कुछ याद आ रहा है आपको, सिमिलर है कौन से श्लोक से? अभी अभी जो हमने कहा नौवां श्लोक, इसी अध्याय का नौवां श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे कर्म मेरा जन्म दिव्य है। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, कोई भी कर्म कर्म का नियम मेरे ऊपर लागू नहीं। अर्थात यहां पर भी भगवान वही कह रहे हैं कि भगवान के कर्म दिव्य है। जैसे कि नवे श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो भगवान को या भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जान लेता है वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। आज के श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे इस ज्ञान को पूर्णतः जान लेता है, इस सत्यता को जान लेता है। कौन सी सत्यता को? कि भगवान के लिए कोई कर्म के नियम नहीं है, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, नहीं हो सकते। जो इसको जान लेता है अभी जानाति, वो भी उसके स्वयं के कर्म के चक्र में नहीं पड़ता। अब यदि एक तर्क से इस श्लोक को समझा जाए तो भगवान बहुत सूक्ष्म तरीके से एक मेन मैसेज इस श्लोक का क्या दे रहे हैं हम लोगों के लिए। भगवान कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं कर्म फल की कामना नहीं करता। स्पृहा, ये शब्द इस्तेमाल किया है आज के श्लोक में। स्पृहा का अर्थ होता है कामना करना। किसकी? कर्म के फल की कामना। तो भगवान ये बता रहे हैं सूक्ष्म तरीके से कि जो कर्म के फल की कामना से कर्म करता है, स्पृहा से कर्म करता है, वो बंधता है। और जो कर्म के फल की कामना से मुक्त है वो कर्म के नियम कर्म के बंधन से भी मुक्त है। तो मोटा मोटी ये है संदेश भगवान का आज के श्लोक के द्वारा। अब पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध यदि हम देखें तो पिछले श्लोक में जैसे हमने चर्चा की, भगवान ने इनका जो विभाजन बताया है, जो भगवान की रचना है चार वर्णों की, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को अपने गुण और कर्म के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए। और आज के श्लोक में भगवान स्वयं और भगवान के शुद्ध भक्त कर्म के नियमों से कैसे परे हैं। अब देखो ये जो भगवान ने सूक्ष्म संदेश दे दिया इस श्लोक के द्वारा बहुत कठिन है। बिना फल के कामना के कर्म करना, हम बद्ध जीवों के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। ठीक उल्टा करते हैं हम लोग, सबसे पहले फल, कर्म के फल को बताओ, दिखाओ, उसकी जानकारी दो, तब जाकर हम कर्म करेंगे। हम ठीक उल्टा करते हैं। और होता क्या है कि जैसे हम उस फल की कामना से युक्त कर्म करते हैं तो हम अपने आप को बाधित पाते हैं, बंधन में पाते हैं और उलझते जाते हैं। फिर उसके नीति शास्त्र में एक कथा से इसको दर्शाया गया। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। बहुत कामना से युक्त ये लोमड़ी हर समय कुछ न कुछ खाने की वस्तु, शिकार के लिए ये लोमड़ी घूमती फिरती। तो एक दिन इस लोमड़ी ने एक मटका देखा जो कि कभी उसने उस जंगल में देखा नहीं था। उस जंगल में केवल अन्य प्राणी, बस उनका मांस, कंकाल उनका पड़ा हुआ, बस यही वो लोमड़ी देखती। आज उसने एक अजीबोगरीब वस्तु को देखा, एक मटके को देखा। तो जाकर लोमड़ी ने उसका मुआयना किया, मटके का मुआयना किया, ये क्या है वस्तु। और जानवर अधिकांश, उनकी जो इंद्रियां हैं वो कहां तक सीमित है, क्या ये मेरे खाने लायक वस्तु है या नहीं। तो सूंघने लगी वो लोमड़ी उस मटके को चारों ओर। फिर जो उसका मुंह था, मटके का मुंह था, उस मटके के मुंह में उसने अपना मुंह डालने की कोशिश करी। कुछ तो उसे अंदर से गंध आई, तो उसने अपना एक हाथ डाला, उस मटके के मुंह में अपना एक हाथ डाला। अब उस मटके के अंदर गोंद था। अब ये मत पूछो कि किसने वो मटका रखा, फेविकॉल था या गोंद था, क्या था। तो उसके अंदर गोंद था, तो उसका एक हाथ जो उसने अंदर डाला था लोमड़ी ने चिपक गया। अब वो एक हाथ चिपका हुआ निकालने की कोशिश वो लोमड़ी कर रही है, मजबूती का जोड़ था, निकाल नहीं पा रही वो लोमड़ी। तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स क्या होता है, दूसरे हाथ से अब ये हाथ निकालो। तो उसने अपना दूसरा हाथ डाला, तो अब दो हाथ उसमें फंस गए। अब लोमड़ी ने पीछे वाले के जो दो पैर हैं उसके, उनको अगर पैर कहो तो वो एक पैर डाला, वो भी, चौथा वो भी, तो दो आगे के हाथ, पीछे के दो पैर, चारों अंदर। और फिर मुंह डालने की कोशिश की कि मुंह से यदि मैं इन चारों को बाहर निकाल लूं धक्के से, तो अब मुंह भी फंस गया। तो नीति शास्त्र में यह कहानी बताई गई है कि जीव कर्म बंधन में इस प्रकार से फंसता है। अच्छा खासा घूमता फिरता जब वो किसी विषय वस्तु को देखता है, मटके को देखता है, तो पहले जिज्ञासा होती है, ये क्या नई वस्तु है। फिर इर्द गिर्द घूमते हुए सूंघता है वो जीव, फिर बाद में उसको आजमाने के लिए एक हाथ डालता है, फंसता है, अब उसको निकालने के लिए दूसरा, तीसरा, ये वो, है ना। पहले देखता है कि कौन से सोसाइटी में अच्छा फ्लैट अवेलेबल है, सूंघता है, हाँ ये अवेलेबल है, फिर देखता है अच्छा लगा, हाँ सब कुछ अपने अनुसार है, फिर लोन लेता है, फिर क्या हुआ, एक हाथ गया अंदर। फिर वो लोन को चुकता करना है, कितने 25 साल तक उसको लोन को चुकता करना है, उसके लिए फिर ईएमआई भरते रहने के लिए और काम करना पड़ेगा, या और किसी से लोन ले लेता उसको, ये लोन को चुकता करने के लिए दूसरा हाथ गया, तीसरा, ऐसे ऐसे करके लोमड़ी की तरह मटके के अंदर सब कुछ, अंदर चारों कोने चित। शुरुआत कहां से हुई, स्पृहा, कामना से। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ये जो श्लोक है यहां से कर्म के नियम की श्रृंखला भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा फेवरेट टॉपिक है कर्म। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। एक न्याय है नीति के अनुसार, इसको कहते हैं आरोपिता न्याय, उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। सर्वप्रथम लेट्स टेक अ टूर ऑफ कर्मा रेस्टोरेंट। मैंने यूके में एक रेस्टोरेंट का नाम देखा, कर्मा रेस्टोरेंट, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये कर्मा रेस्टोरेंट। तो आज उसी एग्जाम्पल को लेकर हम कर्म का जो नियम चलता है इस संसार में उसकी चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पर कर्म के नियमों का प्रभाव क्यों नहीं होता, अभी जानाति शब्द की व्याख्या। और बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के संदर्भ में जो भगवान भक्त और भक्ति की विवेचना की है वो अप्रतिम है, जानने योग्य है वो। तो सर्वप्रथम आरोपिता न्याय, ये आरोपिता न्याय क्या है, भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, और पिछले श्लोक के अंतिम पंक्ति में जो हमने ली, तुरंत भगवान ने पहले कह दिया कि मनुष्य समाज की रचना गुण कर्म के अनुसार उनके जो वर्ण और आश्रम है उसे हुई है, मेरी रचना है। तुरंत भगवान ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, अर्जुन मुझे मत इंक्लूड करना। आज के श्लोक में भी भगवान उसको इलैबोरेट कर रहे हैं, उस क्लैरिफिकेशन को इलैबोरेट कर रहे हैं, मुझ पर नहीं है वो कर्म के नियम लागू। तो आरोपिता न्याय क्या होता है कि जब हम अपनी परिस्थिति को भगवान पर आरोपित करना चाहते हैं, हमारी परिस्थिति को, और अधिकांश यही होता है जब एक बद्ध जीव भगवान के विषय में सुनता है तो सबसे पहले वो इक्वेट करना चाहता है, अच्छा यदि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ हो रहा है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो ये जो कृष्ण राम इत्यादि, ये भी तो, इन्होंने भी तो मां बाप लिए, ये भी तो रामचंद्र जी की पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने भी विवाह किया, तो कोई खास अंतर नहीं दिखता है मुझ में और इन भगवान में। इसको बोलते हैं बहुत, ये एक अलग प्रकार का अनर्थ, इससे शुरुआत होती है इस भौतिक संसार में हमारे कर्म बंधन की यात्रा की। कौन से न्याय से? आरोपिता न्याय। जैसे अक्सर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को लेकर लोग उनके कुछ लीलाओं का अनुकरण करना चाहते हैं आरोपिता न्याय के आधार पर, या कई बार उनके प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे एक बार एक व्यक्ति मुझे बंबई में प्रश्न पूछ रहा था, तो आप बोलते हो कि ये भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और एक 16,108 महल द्वारका में, तो वो टॉयलेट की व्यवस्था कैसी थी? मतलब मेरा मतलब है कि कॉमन टॉयलेट्स था सबके लिए या अटैच था एक एक पैलेस में? इसको कहते हैं आरोपिता, क्योंकि हम लोग क्या है, बस वहीं तक सीमित है हमारी बुद्धि, उधर तक ही सोचते हैं। तो अच्छा 16,000 पैलेस, लाइट वाइट तो नहीं जाती होगी शायद, लाइट चली गई तो सबकी एक साथ लाइट जाती थी। अच्छा स्कूल बस में कितने बच्चे जाते होंगे फिर 16,108, कितनी बड़ी स्कूल बस होगी, आधार कार्ड निकाला था क्या? ये सब। अच्छा भगवान इतना माखन खाते थे, कोलेस्ट्रॉल बड़ा था उन्हें? इसको बोलते हैं आरोपिता ने। मतलब जैसे कि वो एक बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन कि अरे कैसे भगवान है जिन्होंने 16,108 गर्लफ्रेंड्स बनाए, गर्लफ्रेंड्स बोलते हूँ, What is this girlfriend? 16,108 girlfriends. तो हम उनको कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान के 16,108 गर्लफ्रेंड्स थे, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी एक भी नहीं है. तो ये आरोपिता जो न्याय है जिसके अंदर, अरे मेरी एक बीवी के साथ बनती नहीं है, 16,108 के साथ कैसे बना के रखे हो, नहीं हुआ, तलाक भी नहीं हुआ किसी के साथ. इसलिए ये जो हमारी मनोधारणा है बद्ध जीव की, इसको क्लैरिफाई करने के लिए भगवान ने ये इस प्रकार के श्लोक कहे हैं भगवद गीता में. तो एक सुंदर उदाहरण श्री प्रभुपाद ने दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि वो किस प्रकार की है. जैसे कि एक मकड़ी अपना जाल बुनती है, हमने मकड़ी के जाल कितने साफ किए हैं घर पर, देखे भी हैं. आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा मकड़ी के जाल का. ये मकड़ी ऐसे ही नहीं केवल कोई उसको काम करने के लिए है नहीं, इसलिए वो मकड़ी अपना जाल बनाती रहती है, बुनती रहती है, फ्री टाइम रहता है तो चलो थोड़ा डेकोरेशन करें घर पर, या ये लोग इनको क्या काम वाली बाई को साफ सफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए इसलिए जाल बना दिया. स्पाइडर्स वेब ये शिकार पकड़ने के लिए, किसे शिकार पकड़ने के लिए ये मकड़ी अपना जाल बुनती है. और दिखने में ये जो जाल है एकदम जैसे कि इंग्लिश में एक हैमॉक कर चीज है, जैसे आपने देखा होगा बीचेस के बगल में लोग है ना, वो ऐसा झूला होता है, मतलब जिसको नेट, नेट का झूला, हैमॉक उसको इंग्लिश में बोलते हैं. तो एकदम वो मकड़ी के जाल के जैसा लगता है, उसके ऊपर वो लोग झूलते हैं. तो हो क्या रहा है, जैसे मकड़ी के जाल में शिकार झूलता है. दैट्स लुक्स लाइक अ हैमॉक फॉर द प्रे. तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई मक्खी या कोई मच्छर या कोई कीड़ा उस जाल में अटक जाता है और वो मकड़ी फिर उसको कैसे अपना शिकार बनाती. आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर इस मकड़ी के जाल में एक मेंढक फंसा है. केवल कोई छोटी सी मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, पूरा पूरा एक मेंढक. और ये मकड़ी क्या करती है, उसका
night has passed. Everything is ready for breakfast to come. In the forest, spider webs proliferate in the very few open spaces available, exactly in the path of small animals, exactly in the path of this little frog. At first, the Nephila seems confused by its prey's size and weight. The movements it detects tell the spider it's not a helpless insect. Better wait till its catch, whatever it is, gets tired. A few minutes later, the Nephila comes to collect its catch. There's no doubt the prey is tired. At first, it seems as if the frog has lost the battle. But the amphibian surprises its captor. Its skin is toxic. A shy bite unleashes an unforeseeable reaction. The spider moves away. If I can't eat the frog, then do I kill it? Do I kill it unnecessarily? Not even a spider will kill just for pleasure. The spider's choice is the natural one. If the prey isn't useful, set it free, unharmed.
तो जैसे आपने देखा, इस मकड़ी ने वो जाल बुना था शिकार को पकड़ने के लिए, परंतु उस मकड़ी के ही हाथ में था कि वो शिकार को पकड़े या शिकार को छोड़े। इतने बड़े शिकार को उस मकड़ी ने छोड़ दिया। तो ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान की सृष्टि ये इस मकड़ी के जाल के समान है। हालांकि बहुत पेचीदा ये जाल होगा मकड़ी का, परंतु कभी आपने नहीं देखा होगा कि मकड़ी स्वयं उसके जाल में फंसती है। कभी देखा? मकड़ी कभी अपने जाल में नहीं फंसती, उसी पर दिन भर रहती है वो। दूसरा कोई कीड़ा या शिकार उसमें जाते ही फंस जाता है, मकड़ी कभी नहीं फंसती। उसी प्रकार से आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। ये पूरी सृष्टि मुझसे उद्धृत हुई है मकड़ी के जाल के समान। और जैसे उस मेंढक को यदि अपने आप को रिहा करना था तो मकड़ी के ही अधीन होकर उसने अपने आप को रिहा किया। सो कृष्णा इज दैट सुप्रीम मैजिशियन हु इज नेवर इल्यूजन्ड बाय हिज ओन ट्रिक्स। जादूगर जो होता है वो अपने जादू से दर्शकों को भ्रमित करता है, परंतु वो स्वयं कभी अपने जादू से भ्रमित नहीं होता। उसकी जो हाथ की सफाई, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। दर्शक जो हैं वो एकदम चकाचौंध देख रहे हैं, ऐसा कैसा किया इसने, रुमाल से कबूतर निकाला, एक को दो हाफ में कर दिया आदमी को, एक उसका आधा हाफ यहां पर है आधा हाफ यहां पर है, कैसे किया, चकाचौंध पूरे जो दर्शक हैं। परंतु वो जो जादूगर है वो तनिक भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके स्वयं के ट्रिक्स हैं। इसलिए भगवान इस संसार में आते भी हैं तो भगवान इस संसार से प्रभावित नहीं होते और भगवान इनके नियमों के अधीन कभी नहीं आ सकते। तो अब हम इस संसार में, हमारी स्थिति क्या है, जैसे कि मैंने कहा हम लोग ये कर्मा रेस्टोरेंट के कस्टमर्स हैं। होते ना कई कस्टमर्स होते हैं, वो कई रेस्टोरेंट्स के लॉयल कस्टमर्स होते हैं। यदि उन्हें मिसल पाव खाना है तो एक ही जगह पर जाएंगे वो, यदि उन्हें पाव भाजी खानी है तो फिक्स्ड उनकी कोई जगह होती है। वैसे हम लोग सब कौन हैं, कस्टमर्स हैं। और कौन से रेस्टोरेंट के कस्टमर्स हैं, ये कर्मा रेस्टोरेंट के कस्टमर्स हैं। तो जैसे साधारणतः किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप जाओ और क्या अनुभव आपको होता है, उसी प्रकार से ये जो कर्मा कैफे है, इस भौतिक संसार का एक कर्मा कैफे। सबसे पहले एंट्री इज फ्री। जैसे जेल में एंट्री फीस नहीं होती, जेल के अंदर जाने के लिए फ्री कोई भी जा सकता है। हम लोग यहां पर उपस्थित, अगर हम डिसाइड करें चलो कुछ महीने जेल में हवा उसकी खाकर आते हैं, फ्री है, एंट्री इज फ्री, बाहर निकलना, इसलिए दुर्ग कहा गया है कि जो निकलने में मुश्किल हो जाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो है ये भौतिक संसार। सो वैसे रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री बहुत फ्री है, ये कर्म करने के लिए इस रेस्टोरेंट में बहुत फ्रीली हम लोग, लगता है हम लोग हाँ भाई हम आजाद नागरिक हैं इस आजाद देश के, हाँ इसलिए हम फ्रीली जो चाहे हम कर सकते हैं। अब ये जो रेस्टोरेंट है कर्मा रेस्टोरेंट, इसका जो गेट है वो बहुत अट्रैक्टिव है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपना गेट सबसे पहले अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कई चीप होते हैं, जैसे ताड़ी माड़ी केंद्र होते हैं, कोई गेट वेट नहीं होता, एक पर्दा खाली है ना, एक पर्दा होता है, तो उसमें उसी प्रकार के लोग भी जाते हैं, उनको पता होता है कि ज्यादा बड़ा गेट करने के फायदा क्या है, क्योंकि अंदर हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो जिसके लिए आए हैं वो गेट वेट उनको वैसे भी ध्यान में नहीं रहेगा बाद में कि कहां से आए थे, कहां से बाहर जाना है, तो इसलिए उधर खाली एक पर्दा लटका रहता है। लेकिन आप देखो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर केवल गेट नहीं, गेट कीपर भी खड़ा रहता है अच्छे यूनिफॉर्म के अंदर, बड़ी उसकी मूछे ऊंचे भी होती है कई बार, और एकदम वो टाइट खड़ा हुआ वहां पर, कई कई बार तो उसके हाथ में कोई हथियार भी होता है, और वो गेट खोलने के लिए दिन भर वो एक ही काम करता है, जो आएगा जाएगा उसके लिए गेट खोलेगा, स्माइल उसको देकर आइए एंट्री फ्री है, बाद में पैसा भरना है, एंट्री फ्री है, आइए आइए। सो इन दिस कर्मा रेस्टोरेंट व्हेन वी वांट टू एंजॉय, इनिशियली एवरीथिंग लुक्स सो अट्रैक्टिव एंड सो अपीलिंग, एम्बियंस इनसाइड, अंदर प्रवेश करने के बाद वो रेस्टोरेंट्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि यदि कोई भूखा भी नहीं है तो जो वहां का अरोमा है, फ्रेग्रेंस है, जिस प्रकार के उन्होंने शेड्स यूज किए हैं, आजकल तो थीम रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वो थीम रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक प्रकार का थीम बना रखा है उस रेस्टोरेंट के अंदर, और उसी के अनुसार वो कस्टमर्स जो हैं वो लालायित हो जाते हैं, एक बार एंट्री कर ली उन्होंने लालायित हो जाते हैं, कई बोर हो जाते चले जाते हैं, एम्बियंस रास नहीं आता। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार वो लोग ने डिसाइड किया कि चलो अभी हमें यहां पर कुछ खान पान कर कर जाना है, सो द मेनू इज फुल ऑफ एंटाइसिंग वैरायटीज। आजकल तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर जो मेनू कार्ड्स होते हैं वो मेनू कार्ड नहीं होते, पहले तो कार्ड हुआ करते थे, खाली एक कार्ड हुआ करता था, है ना, आजकल तो पूरी किताब होती, किताब पन्ने के ऊपर पन्ने, पन्ने के ऊपर पन्ने। पहले हम लोग जाया करते थे, हमारी जब कोई टूर्नामेंट हम जीतते थे टेनिस का, तो फिर उसकी पार्टी होती थी और आलिशान रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब वो 3 स्टार 5 स्टार इस प्रकार की उसके अंदर होती थी पार्टी, तो उसके अंदर वो इतनी मोटी मोटी वो मेनू बुक्स होती थी, बुक्स तो कई बार हम देखते थे परिवार आके बैठते थे उसके अंदर, वो पिताजी वो मेन, क्योंकि बिल उनको भरना है तो सब उनका होता था, वो मतलब एक परिवार बैठा हुआ है तो वो पिताजी मेनू कार्ड हाथ में लिए हैं और वो गाइड कर रहे हैं सुपरवाइजर के जैसे, वो गाइड कर रहे हैं, बंटी तुम स्टार्टर पेज पे हो कि तंदूरी पेज पे हो, कौन से पेज पे हो, मतलब जो पिताजी पेज पे हो वही पेज पे उसको भी होना चाहिए सबको। तो मेनू कार्ड के अंदर इतनी वैरायटी, और उसके अंदर भी वो लोग जो आजकल नाम डालते हैं वो आइटम्स के, वेज पहाड़ी क्या क्या ऐसे नाम डालते हैं, जैसे कि ये सब्जियां पहाड़ से अभी तोड़ के लाए हैं, वेज पहाड़ी गुमशुदा आलू, हाँ? पता नहीं ऐसा कुछ है क्या, तूफानी रायता, तूफानी रायता, गड़बड़ पनीर, गड़बड़ी होने वाला है, गड़बड़ पनीर, गुमशुदा आलू, तूफानी रायता, फिर सतरंगी चटनी, अतरंगी अचार। तो वो जो एक एक आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स इतने वो एंटाइस करते हैं कि वो पढ़कर उनको लगता है कि वाह। तो इनिशियली जीव जो है वो इतने विभिन्न प्रकार के वैरायटीफुल कर्म को देखकर, मनुष्य विशेष रूप से, वो एकदम इससे चकाचौन रह जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर जो ये ऐसे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो वेटर्स और स्टाफ, वो एकदम स्पेसिफिक उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कहाँ खड़ा होना है, क्या पहनना है, कैसे पेश आना है, सब कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कोई साधारण सा अगर थोड़ा लो क्लास, लो बजट कोई ऐसे कैफे रेस्टोरेंट हो, तो उसके अंदर जैसे ढाबे टाइप, या उसके अंदर तो एक रहता है बस खाली, वो एक बेचारा घूमता रहता है दिन भर, और उसका नाम होता है तंबी। तो तंबी घूमता रहता है, और वो मेनू कार्ड भी एक ही रहता है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट्स के अंदर ये लोग मेनू कार्ड, हालांकि कैपेसिटी 100 लोगों की होगी बैठने की, लेकिन मेनू कार्ड 4 ही छापेंगे। तो वो एक मेनू कार्ड बांटता रहेगा, और कोई अगर देख भी रहा है बेचारा मेनू कार्ड अभी भी देख रहा है, तो ये अकेला सब टेबल में इसको अटेंड करना है, तो साहब जल्दी देखो ना कितना टाइम लगा था, उसको भी देने का मेनू कार्ड, ऐसा देख रहा है गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहा है क्या? तो जो कस्टमर होता है उसको बहुत मनोहर लगता है वो देखना, मेनू कार्ड को देखना, मतलब जो बेचारा वो वेटर है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो मेनू कार्ड में, क्योंकि वो कैसा है, बीवी की फोटो देखने जैसा है, कोई इंटरेस्ट नहीं उसका। और कस्टमर, अच्छा दोनों मेनू कार्ड कैसे देखते हैं, वो जो वेटर मेनू कार्ड देखता है जैसे बीवी की फोटो देख रहा है, और ये कस्टमर जो मेनू कार्ड देखता है मतलब गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा है, ऐसे देख रहा है, इतना इंटरेस्ट लेके मेनू कार्ड को देखता है। लेकिन जो थोड़े हाई एंड के होते हैं रेस्टोरेंट, वो हाई एंड के रेस्टोरेंट्स में 3 लोग होते हैं, आपने नोटिस किया, 3 होते हैं। एक होता है वो जो खाली आपका ऑर्डर लेगा, वो ला कर नहीं दे, वो लिख के लेके जाएगा क्या चाहिए आप, वो होता है। और वो एकदम, उसको कम से कम थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, हाई एंड रेस्टोरेंट है, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो अब उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कोई, उसने ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, नहीं बीवाई के से ड्रॉप आउट होगा शायद, तो पता नहीं, ऐसे याद आ गया, हो सकता है बीवाई के का ड्रॉप आउट होगा, और वो होता ना वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी पूरा नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ी इंग्लिश हिंदी मराठी सब मिक्स है ना। तो जब जैसे ही कस्टमर कोई फैमिली आए, तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी उसके अंदर, ओ गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, सीट दिखाएगा पहले, सर हाउ अबाउट दैट कोपचा, मतलब उसकी इंग्लिश में थोड़ी मराठी होगी, वाओ सर व्हाट अ झका सूट, वेयर फ्रॉम घेतला। तो इस प्रकार से वो पहले सीट दिखाए, वो उसका काम सीट दिखाना बिठाना, और फिर सो ऐसे थोड़ा झुके हुए रहते हैं वो लोग, झुके हुए, फिर वो पूछेंगे ऑर्डर, सब ऑर्डर पूछेंगे आपका, फिर वो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग वो एक केमिस्ट्री है, वो ऑर्डर प्लेस करना, वो ऑर्डर लेना और एक ऑर्डर वो प्लेस करना। मतलब मुझे याद है हमारे हमारे बैच का एक हरजिंदर था, वो एकदम पंजाब का जट था, और उसको ऐसे जो हाई एंड होटल्स रेस्टोरेंट के एटिकेट्स उसको इतने पते नहीं थे, वो तो मतलब शेरे पंजाब टाइप था कि ला, रोटी ला, दाल ला, बस काम तमाम कर। तो अब हमने एक बार पहली दफा सिजलर ऑर्डर किया, सिजलर। अभी सिजलर आपको पता है सिजलर क्या होता है? सिजलर सिजलर मतलब उछलती हुई सब्जियां, उसका अगर देसी वर्जन में बताऊं, उछलती हुई सब्जियां ऐसे वो। तो पहली दफा वो ऐसे जैसे कढ़ाई में तेज आंच पर सब्जियां उछल रही हैं, ऐसे ही कढ़ाई की कढ़ाई लेके आते हैं वो लोग, तो ऐसे सिजलर उछलती हुई सब्जियां। तो ये हरजिंदर ने इसने देखा, बोले इधर ही पकाएगा क्या? और फिर ये हाई एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर वो जो वेटर्स होते हैं वो लोग, वो पहले वो सफेद नैपकिन होता है, सब सफेद नैपकिन होता है, वो सफेद नैपकिन इधर बांध देंगे, वही बांध के देंगे आपको, इधर बांध देंगे, फिर वो आपके गोद में भी एक सफेद नैपकिन डालेंगे। तो जब ये सब डाल रहा था तो यार जी ने बोलता, अबे खाना खिला रहा, हजामत कर रहा है। तो वो लोग मतलब पहले तो वो लोग ऑर्डर लेंगे, फिर एकदम वो पूरा पेन पेपर के साथ, हो सकता है कुछ भी लिख नहीं रहा हो लेकिन लगता है कि लिख रहा है, तो उसके अंदर वो पूरा ऑर्डर आपका लेगा, फिर चला जाएगा, फिर उसके बाद वो दिखने नहीं वाला है, फिर दूसरा कोई आएगा लेने के लिए, तब तक आप फिर और देखते रहो, बाकी कस्टमर को देखते रहो, मेनू कार्ड में और भी देखते रहो, फिर कई तो ले लेंगे मेनू कार्ड क्योंकि अभी है ही चार। और फिर उसके बाद में जो भी कुछ वो स्टार्टर सूप वगैरह लेकर आते, फिर मैनेजर आएगा। ये मैनेजर एक बहुत विशेष नस्ल है, ये मैनेजर, ये मैनेजर इसका टिपिकल ब्लैक ब्लेजर होता है, वो पुश्तैनी होता है, वो मतलब उसके पिताजी ने भी वही पहना था, उसके भी पिताजी ने वही पहना था, अब तक ड्राई क्लीन नहीं किया, कैसे तो फिट होता है वो ब्लैक ब्लेजर पहन के, और वो तो और झुक के, मतलब वो ऐसे, आप अभी सूप आपके सामने आया ही है, आपने शुरू भी नहीं किया, वो झुक के, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, पहले मैम बोलेगा वो बेटा, अब बैठा है उसको नहीं बोलेगा कुछ, सबसे पहले गुड इवनिंग मैम, हाउ इज द सूप, अरे पिया पिया ही नहीं अभी तक, हाउ इज द सूप। और फिर वो देख लेगा, उसको पता है क्या ऑर्डर किया, देख लेगा, फिर वो बोलता है इटालियन सूप, इटालियन, वाओ इटालियन, माय फेवरेट आल्सो, यू नो द शेफ who made this soup, we sent him to Italy to learn this Italian soup. अच्छा, आप एकदम इंप्रेस हो जाओगे, अगर आप किचन में जाके देखोगे तो वो कोई गणपत राव, भाले राव, देशपांडे होगा। जो बेचारा कभी कांटे गली से बाहर नहीं गया है, लेकिन ओ दिस इज यू नो। और वो इस तरीके से वो मैनेजर झुकते हुए बताएगा उस सूप के बारे में, पीने नहीं देगा सूप के बारे में, पहले पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएगा उसकी, कि ये सूप कैसे बना, इसका आविष्कार कैसे हुआ, यहाँ पे आपके इस बोल में कैसे आया, कटोरे में कैसे आया, बोला जस्ट 10 मिनट्स अगो आई जस्ट हैड इट, इट्स अमेजिंग, ये वो, मतलब आप अगर अकलमंद है तो समझ जाओ कि इसी कटोरे में 10 मिनट पहले वो भी पी रहा था। तो बेसिकली ये जो अलग अलग अपीयरेंस होते हैं इसको ये लोग इतना अट्रैक्टिव बनाकर रखते हैं कि जैसे लगता है कि बस निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए वहां पर उपस्थित है। तो जो माया देवी के एजेंट्स आपको कर्म करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, वो प्रेरित करने वाले वो इसी प्रकार से बहुत ही लविंग और वो कोऑपरेटिव लगते हैं। अच्छा, एक और, कि जब आपने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया लेकिन आपने देखा बाकी के कुछ कस्टमर्स वो लोग ऑलरेडी अपना ऑर्डर प्लेस किए हुए कुछ तो ले रहे हैं, जैसे मेरे साथ ये किस्सा हुआ हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जो गोविंदाज रेस्टोरेंट है, तो एक मेरे क्लोज फ्रेंड डिवोटी, उनकी एनिवर्सरी थी, तो वो कहे कि प्रभु जी चलिए अपने गोविंदाज में चलते हैं, आज गोविंदाज में डिनर लेते हैं। तो हम लोग गए वहां पर, तो अभी ये इतना ज्यादा रेस्टोरेंट के एटिकेट से वाकिफ नहीं थे, मेनू कार्ड से भी वाकिफ नहीं थे कि क्या आइटम्स क्या होता है, तो फिर उन्होंने बोला, प्रभु जी आप क्या लेना चाहेंगे? मैं भी वही लेता हूं। तो मैंने ऑर्डर किया फोंड्यू। अब उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता क्या है वो, बताता हूं आपको क्या है वो। ऐसे मेल्टेड चीज है और उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि उसके नीचे वो मोमबत्ती जैसी जली रहती है, आग जल रही है। दो कंपार्टमेंट में होता है वो, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में आग जल रही है और ऊपर वो मेल्टेड चीज करके उसका प्रेजेंटेशन ऐसे बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो वो जब आया तो हमारे अक्रॉस द टेबल एक गुजराती फैमिली आई थी, वो बैठी हुई थी वहां पे। तो वो लोग अलग अलग अपना जो भी देख रहे थे, ढोकला थेपला कुछ है क्या यहाँ पे। तो अचानक उसमें से जो मेन था उसने देखा ये आ गया, ये फोंड्यू टाइप क्या है ये। तो उसने वेटर को बोला वो सब कैंसिल करो, ये जो महाराज खा रहे हैं वो लेके आओ। तो हुआ क्या कि एक कस्टमर को देखकर इन्होंने अपना चॉइस बदल लिया। वैसे ही कर्मा रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हम लोग किसी दूसरे के कर्म को इमिटेट करते हैं कि अरे इसने इस प्रकार से अपना परिवार चला रहा है, ये मैं भी ऐसे ही चलाऊंगा। इसने ये गाड़ी ली, मैं भी ये गाड़ी लूंगा। इसने ये सेल्फोन, मैं भी ये। इसने बीवी ली, मैं भी दूसरी लूंगा। तो ऐसे करके उसको ये कस्टमर हुआ है, एंटाइज्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर कस्टमर। अच्छा, फिर ये जो मैं बता रहा था कि अब वो जब कर्म करने जाने वाला है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है इस जीव के लिए। फाइनली मैं अपने स्वयं का कर्म करके अपने पैरों पे खड़े होके, मतलब अभी फाइनली वो पूरे मेनू कार्ड से चूज करने वाला है, फाइनली चूज करने वाला। अच्छा, वो पूरा इन्फ्लुएंस्ड रहता है, उसको पता नहीं है कि वो जो उसकी चॉइस है वो किस पर आधारित है। वो मेनू कार्ड पर सबसे पहले आधारित है, फिर जिस प्रकार से उस वेटर ने उसको प्रेजेंट किया है उसके ऊपर आधारित है। जैसे कि कर्म हमारा आधारित है हमारे पूर्व एक्सपीरियंस के ऊपर, तीन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स कितने अट्रैक्टिव है उसके ऊपर, कौन से कल्चर पर हमारी परवरिश, ये सब पर आधारित होता है। फाइनली उस कस्टमर को लगता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट चॉइस कर रहा हूं। जैसे कई बार ये ऐसे जो मैं बता रहा था हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर कोई कॉफी पीने गया है, सिंपल सी कॉफी कॉफी ऑर्डर कर रहा है, तो वहां से उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं, सर मीडियम, लाइट, स्ट्रॉन्ग, कैपुचिनो, मोका, लाटे। भैया वो मीठी वाली दे दे यार। तो उसमें इतनी वैरायटी होती है कि वो अगर इनिशियली सोच रहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट मेरी चॉइस व्यक्त कर रहा हूं, तो उसके ऊपर इतनी सारी और चॉइसेस उसको सामने दिखाई जाती है कि वो और कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने मेरी ओरिजिनल चॉइस सही करी थी या नहीं करी थी। इन्फ्लुएंस्ड अगेन बाय सो मेनी फैक्टर्स। अच्छा, जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब इस कर्मा रेस्टोरेंट में जीव ने अपना कर्म प्रारंभ किया, क्या शुरू हो जाता है? बिलिंग। कोने में एक शख्स बैठा हुआ है जो कस्टमर की तरफ देख भी नहीं रहा है, हाँ, और कस्टमर को पता भी नहीं है कि वो कौन है, वो क्यों वहां बैठा हुआ है। और वो जैसे ही उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, बिलिंग शुरू हो जाता है। तो ये कर्मा रेस्टोरेंट में हम हमारे कर्म जैसे ही प्रारंभ करते हैं, माया देवी के गल्ले पे बैठे हुए मैनेजर्स वो बिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम दूसरों की नकल कर कुछ कर्म करते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में कर्म करते हैं, हमारी परवरिश इत्यादि जो भी कुछ हमने बताया. समटाइम्स वॉट कम्स ऑन द प्लेट इज नॉट एग्जैक्टली वॉट द कस्टमर हैड इमेजिन्ड वाइल ऑर्डरिंग. जैसे उसने मेन्यू कार्ड में पढ़ा तो मेन्यू कार्ड में ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, और कई बार ये वेटर्स भी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कुछ आइटम्स को, वॉट इज स्पेशल टूडे ऑन योर मेन्यू ऑन योर रेस्टोरेंट टूडे, तो वो कैसे डिस्क्राइब करता है, सर टुनाइट विल बी सर्विंग यू द मोस्ट एरोमैटिक बासमती राइस हार्वेस्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ देहरादून सिमर्ड वेरी स्लोली इन द ब्राइट येलो लेंटल्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्म्स ऑफ पंजाब स्पाइस्ड विथ फाइनली चॉप्ड वेजीज एंड टेम्पर्ड इन द मोस्ट aromatic clarified butter garnished with a dash of lemon and finely chopped coriander served on a platter of creamy white yogurt. Hai kya khichdi? Khichdi hai. Khichdi ka description aisa, oh bop, aromatic basmati rice, lentil, dash of lemon, clarified butter, spiced. Ew. तो कई बार इस जीव को लगता है कि वो बहुत कोई महत् कर्म कर रहा है, बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया उसने, और ऐसे योनि में मैं पैदा हुआ हूं डिंडोरी में. तो ये नेक्स्ट एस्पेक्ट, द मोर यू ऑर्डर द बिगर द बिल. उसके अंदर जो अलग अलग वैरायटीज है कि इसको करस्पॉन्ड करने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो ये सब के लिए अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस बनाए रहते हैं. वैसे ही जब कोई किसी मनुष्य समाज में पैदा होता है तो उसके इतने कार्मिक कॉम्बिनेशंस उसको करने पड़ते हैं. एक उसने कर्म किया, उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग एक और कर्म उसको करना पड़ता है. जैसे कि जब कोई स्कूल कॉलेज जा रहा है तो वो एक कर्म कर रहा है. अब स्कूल कॉलेज क्यों जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग उसको नौकरी भी करनी पड़ेगी, क्या फायदा नहीं तो स्कूल कॉलेज जाकर, तो नौकरी की है. अभी नौकरी क्यों कर रहा है, फिर उसके बाद में घर बसाना होगा, तो फिर उससे करस्पॉन्डिंग. तो ऐसे ही ये मेनू कार्ड के अंदर जो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि अगर आप वेज पहाड़ी ले रहे हो तो उसके साथ आपको तूफानी रायता लेना पड़ेगा, फिर उसके साथ वो रोटी भी लेनी पड़ेगी, और उसके साथ वो सलाद भी लेना पड़ेगा, फिर उसके साथ कुछ पीने के लिए भी, फिर उसको पचाने के लिए भी, फिर कुछ ठंडा, फिर गर्म, फिर ये वो. ऐसे करके जीव के जो कर्म हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स के बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. द मोर यू हैव टू ऑर्डर द मोर यू हैव टू पे द बिल. बहुत इंटरेस्टिंग ये रेस्टोरेंट का ऑब्जर्वेशन है. इट अपियर्स that everything else in this restaurant other than the food you have ordered is free. Hai na? AC, aapke liye jo AC chalaya gaya hai, jo ekdam soft cushion jiske upar aap baithe hue ho, lagta hai ki ye sab thodi bill mein included hai, lekin wo sab bill mein included rehta hai. India mein to hote hai na AC, partly AC, ye pata nahi partly AC ka kya concept hai, मतलब कुछ समय के लिए चालू करते बंद कर देते हैं. अच्छा, आधा रेस्टोरेंट एसी है, आधा रेस्टोरेंट नॉन एसी है, इस प्रकार से. तो उसके अंदर वही चीज आप लेने जाओगे तो उसके अंदर आपको वो इतनी अलग प्राइस में मिलेगी. वही चीज आप ना, अगर एक चाय भी होगी तो उसके 10 रुपए ज्यादा होंगे या 50 रुपए ज्यादा होंगे. जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट बड़ा होटल है, ये 3-star 5-star टाइप होटल है. इसके अंदर आप चाय भी पीने जाओगे तो उसके अंदर वो लोग इतनी वैरायटी देते हैं. पहले वो पूछेगा, सर पहले आप बताइए कि पानी कौन सा लाऊं आपके लिए, विच वाटर वुड यू लाइक टू हैव, बिजलेरी, आरओ, एक्वागार्ड, नुकड़ का हैंडपंप, कौन सा चाहिए, पानी कौन सा, पानी के ऊपर टेंशन आ जाता है। और फिर चाय भी ऐसी लाते कि वो आप ही को बनानी पड़ती उधर। तो एक बंदे ने फिर उस प्रेसिडेंट होटल के बाहर अपनी चाय टपरी लगाई और उसका नाम दिया वाइस प्रेसिडेंट, कि जो इधर अफोर्ड नहीं कर सकते इधर आ जाओ, बनी बनाई मिलेगी आपको, वो भी 5 रुपए में। नथिंग इज फ्री। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्टली अनहेल्दी चॉइसेस ऑन द मेनू कार्ड आर ऑफन द टेस्टीएस्ट वंस। उसी प्रकार से इस संसार में जो हमें सबसे ज्यादा कर्म बंधन में बांधते हैं वो कर्म सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं करने के लिए, है कि नहीं? इसलिए अभी देखो, जनरली ये बड़े हाई एंड इसके अंदर सलाद वगैरह फ्री होता है, हेल्दी है वो, लेकिन वो सब फ्री है। लेकिन जो सबसे ज्यादा टेस्टी होंगे वो सबसे कॉस्टली होंगे, और जो सबसे ज्यादा कॉस्टली टेस्टी होंगे वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी होंगे। कस्टमर्स जनरली एक्सपीरियंस डिलेड रिएक्शन ऑफ देयर एक्शंस। कर्मा का एक और प्रिंसिपल क्या है, आपने अभी कर्म किया है कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसका रिएक्शन तुरंत मिलेगा। हम लोग हमारे गीता कोर्स में जब कर्म के ऊपर सुनाते हैं तो हम लोग क्या सुनाते हैं, डिलेड कार्मिक रिएक्शन। तो ऐसे ही उस समय जब कस्टमर खा रहा है एक के बाद एक ये व्यंजन लेकर अलग अलग ऑर्डर करते हुए खा रहा है, उसको सब कुछ इतना टेस्टी लगता है आनंद में, रिएक्शन तुरंत नहीं हो रहा है। कब होता है रिएक्शन? अगले दिन सुबह में भी डिलेड रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना कि अरे मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ पेट खराब, डॉक्टर सबसे पहला क्या पूछता है, कल रात को क्या खाया था। पेट खराब जो मरीज डॉक्टर के पास जाता है सबसे पहला डॉक्टर क्वेश्चन पूछता है, कल क्या खाया था बताओ। तो डिलेड कार्मिक रिएक्शन, एक हिंदी के क्वेश्चन पेपर में मुहावरों के ऊपर लाइन लिखनी थी, मुहावरा था करे कराए पर पानी फिर जाना। तो स्टूडेंट ने लिखा, कल मैं मचान गया था रेस्टोरेंट में, इधर है ना कोई मचान करके, तो वहां पर 2000 का मैंने खाया, परंतु सुबह जब मैंने पॉटी में फ्लश दबाया करे कराए पे पानी फिर गया। इसको बोलते हैं डिलेड कार्मिक रिएक्शन, कि उसका रिएक्शन कुछ घंटों बाद कभी न कभी तो आने ही वाला है। फाइनली There are heavy consequences upon failing to pay your bill. यदि कोई ऐसा ही लुखा चला गया अंदर और जो उसका सत्कार हुआ है इतना, जो मुस्कुराते हुए उसको वो वेटर, वो मैनेजर, गुड इवनिंग जेंटलमैन, ये सूप वो सूप एवरीथिंग, देन ही विल बी इन अ सूप इफ ही डजंट पे। होगा क्या, ही विल बी वन ऑफ द स्टाफ, डिफरेंट काइंड ऑफ अनसाइड। अंदर एंट्री कस्टमर्स को होती नहीं है, केवल जो कस्टमर बिल नहीं भरते उनको अंदर एंट्री होती है किचन में, बहुत अच्छी से एंट्री देते हैं वो लोग। सो नथिंग टू इलेबरेट ऑन दिस, व्हेन वन डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन्स कर्मा विच मीन्स पेइंग द बिल, हैवी कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दैट। इसलिए वेलकम टू द कर्मा कैफे, देर आर नो मेन्यूज, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। तो अब इसके ऊपर भगवान आने वाले श्लोकों में और इलैबोरेट करने वाले हैं कि ये जो कर्म का नियम है ये किस प्रकार से लागू होता है। परंतु आज के श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मेरे ऊपर किसी भी ये कर्म के नियम लागू नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के कर्म भगवान ने ही अपने स्वयं के मुख से कह दिया कि दिव्य है। कैसे? अलौकिक है, अद्भुत है और अचिंत्य है। तो भगवान के कर्मों को दिव्य बताया गया है इन तीन कारणों के वजह से। अलौकिक का अर्थ क्या होता है? जो कर्म इस लोक से परे हो। तो फिर हम लौकिक समझने की कोशिश करें कि लौकिक कर्म क्या होते हैं, जो हम लोग जिसके अंदर रचे पचे हैं। एक्शंस फॉर वंस सर्वाइवल, हमें जो कर्म करने पड़ते हैं हमारे जीवन निर्वाह के लिए, वो है लौकिक कर्म। भगवान को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। एक्शंस विच आर ऑब्लिगेटरी, ऐसे कर्म जिनका कोई पर्याय नहीं है, इनवॉलंटरी, हम नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, इनवॉलंटरी। देन एक्शंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स एंड फाइनली एक्शंस विच आर बाइंडिंग। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं कर्म के, ये लौकिक कर्म के एस्पेक्ट्स हैं। और आप देखो, भगवान श्री कृष्ण जब भी कुछ कर्म करते दिखते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स उनके ऊपर लागू नहीं। इसलिए भगवान के कर्म दिव्य क्यों हैं? पहला कारण अलौकिक, दूसरा कारण भगवान के कर्म दिव्य हैं क्योंकि अद्भुत हैं, हरक्यूलीन, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। भगवान के कर्म ऐसे हैं कि वो आते हैं एक मनुष्य रूप में, परंतु मनुष्य रूप में, जैसे कि पुतना का वध उन्होंने किया जब वो 6 दिन के थे, 6 दिन का बालक इतनी विकराल राक्षसी का वध कर सकता है, और वो भी स्तनपान करते हुए, अद्भुत, कांट बी इमिटेटेड। ऐसे कर्म जो कभी न भूतो न भविष्यति, ये है एक और अद्भुत कर्म के पहलू। इफेक्ट इज फॉर मैक्सिमम पीरियड एंड ऑन मैक्सिमम पीपल, जो सब जगह पर उनके कर्म का जो परिणाम है, जो इफेक्ट है, वो व्याप्त है, ये है अद्भुत। और फिर तीसरा कारण भगवान के कर्म वो दिव्य हैं क्योंकि अचिंत्य, इनकंसीवेबल। अचिंत्य का अर्थ है इनकंसीवेबल। इसलिए भगवान जब ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, जैसे भगवान ने रासलीला रचाई, भगवान माखन चोरी किए, ऐसे कितने कर्म हैं भगवान के जो कि हम हमारे ये छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ पाते। इसलिए उसके लिए एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की आवश्यकता पड़ती है। जानबूझकर भगवान अपने अचिंत्य कर्म करते हैं ताकि हम लोग यहां पर एकत्रित होकर उनकी चर्चा करें। जब हम लोग एकत्रित होकर चर्चा करेंगे तो उसमें फायदा किसका होगा? भगवान का नहीं, हमारा ही फायदा होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। जैसे कि आज के श्लोक में बताया गया है, अभी जानाति, इन भगवान के अचिंत्य कर्मों को जानकर हम हमारे कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। अचिंत्य कर्म ऑफ कृष्णा प्रूव्स कृष्णास इंडिपेंडेंस एंड फाइनली ही परफॉर्म्स सच काइंड ऑफ अचिंत्य कर्म टू टेस्ट अवर फेथ, कि हमारी श्रद्धा भगवान में कितनी है। तो और बहुत से मुद्दे हैं भगवान के कर्म की दिव्यता के। कृष्ण कर्म इज डिस्कस्ड बाय मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स। ये हम थोड़ा फास्ट ले जाएंगे क्योंकि इसकी चर्चा हमने पहले भी की है 4.9 में, कि यदि देखा जाए तो डिस्कस कौन करते हैं भगवान कृष्ण के कर्म? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि, मैत्रेय ऋषि, विदुर, ये सारे बड़े बड़े जो महानुभाव महाजन हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं। तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लेवल के लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लेवल के लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो कर्म जिन्होंने किए हैं, जिसका ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो कितने दिव्य होंगे। सेकेंड एस्पेक्ट, सेकेंड रीजन, कृष्ण कर्म इज अनमैच्ड इन इट्स डिस्क्रिप्शन। यदि कोई कल्पना भी करे तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता जिस प्रकार भगवान अपने कर्म करते हैं। कृष्ण कर्म इज नेवर स्टेल। जैसे कि हमने कितनी दफा भगवान की गोवर्धन लीला, भगवान की दामोदर लीला कितनी दफा हमने सुनी है, सब जानते हैं एक एक पॉइंट, उसके लेसन सब कुछ, फिर भी जब भी कार्तिक का महीना आता है, जब भी हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, भगवान की ये लीलाएं ये हर समय नवनवायमान रहती हैं। कृष्ण कर्मा इज ऑलवेज एंटरटेनिंग, अलोंग विद बीइंग एंटरटेनिंग इट इज ऑल्सो प्यूरिफाइंग। दिस इज द फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा हैविंग हिज कर्मास बीइंग डिवाइन। कृष्ण कर्मा इज यूनिवर्सली अट्रैक्टिव। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने डायरेक्ट कृष्ण कथा सुनाई किनको? अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन्स को, जिनको कुछ पता भी नहीं था कि ये कृष्ण कौन व्यक्ति है, ये भागवतम क्या है, ये राधा रानी कौन है, ये अर्जुन कौन है, कुछ पता नहीं। परंतु जब श्रील प्रभुपाद के मुख से इन्होंने सुना तो इतना अट्रैक्टिव इनको लगा। कृष्ण कर्म टीचेस ऑल द ह्यूमन लेसन्स फॉर आइडियल लिविंग। भगवान के सारे अवतार आप लोग, उन्होंने एक एक ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रस्थापित किए हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपनाने के लिए, कि परिवार को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, भाई बहन में कैसा प्रेम होना चाहिए, एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए, हर एक जीवन के हमारे पहलू के जो ऐसे मूल्य हैं वो भगवान ने अपने उदाहरण से सिखाए हैं। कृष्ण कर्म शोज द परफेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस। कृष्ण कर्म इज फॉर ऑल एजेस। अब देखिए कि हम लोग जब कुछ कर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्लास या एज, आयु इत्यादि, वो लोग उसकी नकल कर सकते हैं या उसे प्रभावित हो सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण हम इस्कॉन के अंदर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये हमारे एक इस्कॉन के फैमिली का बच्चा, इसका एक वीडियो पहले वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि ये छोटा सा बच्चा इतना छोटा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल भी नहीं पाता, लेकिन ये बुलवा रहा है, बोल नहीं पाता है लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा लगा मुझे ये। नॉर्मली ये रोता रहता है, जैसे ही इसके पिताजी महामंत्र बोलना प्रारंभ करते हैं,
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी हमारी कंडीशन क्या होती है, ये तो बेचारा इतना मासूम है बच्चा, हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमको यदि कोई माला थमा दे तो हम रोना शुरू करते हैं, अरे रे 16 माला करना है आज, पूरा माला करने के लिए बोला है, तो आंसू तभी निकलते। और कई बार दूसरा कोई महामंत्र कर रहा है तो हम लोग घूमते फिरते चुप रहते हैं, है ना, ऐसे बच्चा भी ऐसे ही है। कृष्ण कर्म कैन बी सीन थ्रू द इयर्स, क्या अद्भुत भगवान के कर्म की व्याख्या की गई है कि भगवान के कर्म को यदि देखना है तो आंखों से नहीं, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों से, और वो जो चक्षु हैं हमारे कर्ण रंध्रेण विवरेण। कृष्ण कर्म लिबरेट्स हुएवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इट। जो भी भगवान श्री कृष्ण के किसी न किसी प्रकार से उनके कर्म के संपर्क में आता है वो अवश्य ही शुद्ध होता है। तो अब इतने सारे जो पहलू भगवान ने अभी बता दिए, अब भगवान आज के श्लोक में आगे कह रहे हैं अभी जानाति। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस नियम को, कौन से नियम को, कि मैं कर्मों के नियम के अधीन नहीं हूं, इसे कोई अगर जान लेता है, इस सत्य को जान लेता है, तो अभी का अर्थ है पुनः और जानाति का अर्थ है जानना। अर्थात अभी जानाति का पूरा, इस पूरे शब्द का अर्थ इस प्रकार से हुआ, श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को अथवा भगवान और जीव के शाश्वत संबंध को पुनः जानना। पुनः जानने का अर्थ क्या है कि हम जानते थे अब भूल चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में आने के बाद घर का खाना भूल चुके हैं, तो इसलिए जब भगवान इस रेस्टोरेंट में आकर हमें याद दिलाते हैं अपने स्वयं के कर्म कर भगवान कहते हैं, उसे कहते हैं अभी जानाति। फिर पुनः हमें याद आता है कि अरे हमारा एक घर है जहां पर हमारे वास्तविक माता पिता हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है। ये सब कुछ धीरे धीरे जब याद आता है, जैसे कि हम लोग जब यहां पर आते हैं तो हमारी याददाश्त, कौन सी खोई हुई याददाश्त वापस आ रही है, भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदर्भ में जो याददाश्त हमारी खोई हुई है वो वापस याद आ रही है। अब फाइनली भगवान ने ये जो लाइन कह दी कि जो मेरे इस सत्य को जान लेता है वो कर्म से मुक्त हो जाता है, मेरी तरह, जस्ट लाइक कृष्णा, वी कैन ऑल्सो Be freed from all karma, karma फल। ये भगवान बता रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाद हमारे वैष्णव आचार्य विद्वान, तो उन्होंने भगवान एवं भक्ति, मतलब जो अभिजानाति हो गया मतलब वो भक्त हो गया, तो भक्ति और भगवान में समानताएं पहली बताई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा परंतु आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर उन्होंने इसकी व्याख्या की है इस श्लोक के ऊपर। तो ये जो तीन गुण बताए गए हैं भगवान के, ये तीन गुण भक्ति के भी बताए गए। जैसे कि भगवान स्वतंत्र हैं और स्वराट हैं, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड ऑटोक्रैट, वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वप्रकाशित हैं वैसे भगवान की भक्ति भी स्वप्रकाशित है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे भगवान की भक्ति भी सच्चिदानंद है। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि यदि भगवान की भक्ति सच्चिदानंद है परंतु हम बद्ध जीव, हम तो सच्चिदानंद नहीं है, तो एक असत, अचित और निरानंद जीव सच्चिदानंद भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो चक्रवर्ती पाद वो इसका उत्तर देते हैं कि जैसे कोई बीज है, बीज को आप भूंज दो तो उसके अंदर जो पैदा करने की शक्ति है खत्म हो जाती है। रोस्टेड सीड्स, फ्राइड सीड्स। तो वो जो श्लोक है ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, कि जैसे ही भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रवेश करती है किसी बद्ध जीव के अंदर, उसके बद्ध इंद्रियों के अंदर, तो उसके बद्ध इंद्रियों को भी भुंजते ते तघम पापा। भक्ति क्या करती है, उसको सच्चिदानंद धीरे धीरे बनाने लगती है। इसलिए शुद्ध भक्ति भगवान की ये तीन चीजें करती हैं, रिवील्स भगवान, प्लीजेस भगवान एंड फाइनली कंट्रोल्स भगवान। वो जो भगवान स्वतंत्र हैं तो भक्ति भी स्वतंत्र है, और भक्ति अपनी स्वतंत्रता से स्वतंत्र भगवान को अपने अधीन बना लेती है। इसलिए ये जो श्रृंखला है, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दैट भक्ति रिवील्स अस भगवान टू अस। देन दैट भक्ति प्लीजेस दैट भगवान, फर्स्ट रिवील्स दैट भगवान, पहचान भगवान की कराकर देती है भक्ति, फिर वो भक्ति वही भगवान की जो पहचान करा दी है उस भगवान को प्रसन्न करती है, और जब भक्ति आगे बढ़ती है तो वो भगवान को कंट्रोल भी करती है, जैसे कि माता यशोदा ने भगवान को अपने भक्ति के वश में बांध के रखा था। अच्छा, ये जो हमने बहुत दफा इस्कॉन में ये फोटो देखी होगी, मुझे रिसेंटली पता चला, प्रभुपाद का एक पास्ट टाइम में पढ़ रहा था, कि ये कोई भी आप देखो इस्कॉन की जो पेंटिंग्स है उसके पीछे भगवान की कोई लीला है, तो ये जो फेमस यशोदा कृष्ण की पेंटिंग है इसके पीछे एक लीला है भगवान की, या सिद्धांत है भगवान की, लीला का सिद्धांत है। और वो चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसी टीका में कि जब भी वृंदावन में भगवान यशोदा के सामने कोई ऐश्वर्य को दिखाते थे, जैसे कि अपने मुख में उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया, और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर जब वो मोहित हो जाती थी या भ्रमित हो जाती थी, तो भगवान को पसंद नहीं था कि मेरी मां मुझे भगवान माने, अरे मैंने ऐश्वर्य दिखा दिया अब तो ये मेरे को अपना बेटा नहीं मानेगी, मेरे को भगवान मानेगी। तो भगवान जब माता यशोदा को देखते थे भ्रमित हुआ, तो भगवान माता यशोदा के गोद में कूद के आलिंगन माता यशोदा को कर लेते, तो वो आलिंगन करते ही माता यशोदा भूल जाती थी कि उन्होंने अभी अभी कोई ऐश्वर्य देखा है। तो ये वो पेंटिंग है, ये जो फेमस पेंटिंग है यशोदा कृष्ण की, ये पेंटिंग में क्या हो रहा है, अभी अभी माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐश्वर्य देखा है, जो भगवान को पसंद नहीं कि माता यशोदा भ्रमित हो रही मेरे ऐश्वर्य को देखकर, तो भगवान कूद गए उनके गोद में, आलिंगन कर दिया और माता यशोदा को भुला दिया। ये है शुद्ध भक्ति का प्रभाव, इट रिवील्स भगवान, इट प्लीजेस भगवान एंड इट कंट्रोल्स भगवान। अब फाइनली चक्रवर्ती पाद ये प्रश्न हमारे सामने रख रहे हैं कि यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति स्वतंत्र है, स्वप्रकाशित है, सच्चिदानंद है, तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो ये हमारा फाइनल स्लाइड है। अब ये प्रश्न चक्रवर्ती पाद पूछते हैं, क्या पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के वजह से जीव को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हम लोग जो यहां पर शुद्ध भक्ति के मार्ग के संपर्क में आए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई पुण्य कर्म किया होगा पिछले जन्म में जिसके वजह से हमें शुद्ध भक्ति मिली है, क्या वो रीजन है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं नहीं, यदि पुण्य कर्म रीजन बनता है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का, तो शुद्ध भक्ति डिपेंडेंट हो जाएगी पुण्य कर्म के ऊपर, जबकि शुद्ध भक्ति क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बिकॉज प्योर डिवोशनल सर्विस इज इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट बी बॉर्न आउट ऑफ एनी पायस एक्टिविटी। तब फिर चक्रवर्ती पाद ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या पुण्य कर्म का अभाव वो शुद्ध भक्ति को पैदा करता है। नहीं, जैसे कि यदि ये कहा जाए आप आलू और टमाटर नहीं खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्या ये स्वस्थ रहने का पॉजिटिव डेफिनेशन है। नहीं, ये कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। तो उसी प्रकार से पुण्य कर्म का अभाव वो शुद्ध भक्ति को हमें दिलाएगा, ये भी संभव नहीं है। तब फिर वो फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या भगवान की अहितु की कृपा शुद्ध भक्ति का कारण है। क्या लगता है आप लोगों को, ये फाइनल कारण हो सकता है भगवान की अहितु की कृपा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो बोलते हैं ये भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि भगवान के अहेतु की कृपा शुद्ध भक्ति के पैदा होने का कारण होती है तो फिर कुछ लोगों को क्यों मिलती है? गीतामृत के लिए खाली आप लोग क्यों आए? पूरा नासिक क्यों नहीं आया? केवल कुछ लोग क्यों? मतलब भगवान पक्षपात कर रहे हैं? भगवान के अहेतु की कृपा तो सबके लिए होनी चाहिए, तो सबके अंदर शुद्ध भक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही? केवल कुछ लोगों के अंदर क्यों हो रही? कुछ लोगों के अंदर क्यों नहीं हो रही है? तो ये भी कारण नहीं हो सकता। अब वो एक बहुत इंटरेस्टिंग न्याय हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। इस न्याय का नाम है अर्थापत्ति न्याय। घबराइए मत, बताता हूं मैं आपको। अभी तक चाय पत्ती पता थी आपको। अर्थापत्ति न्याय का अर्थ है देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है जो दिन भर उपवास रखता है लेकिन फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। आजकल चल रहा है बहुत। तो चक्रवर्ती पाद अर्थापत्ति न्याय को समझाने के लिए बता रहे हैं कि देवदत्त नाम का व्यक्ति है जो दिन भर उपवास रखता है परंतु फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। कैसे? रात को खाता है। ये पहेली थी। मैंने अर्थापत्ति न्याय के अनुसार क्या बताया था आपको? देवदत्त नाम का व्यक्ति दिन भर उपवास रखता है फिर भी वजन बढ़ रहा है, अर्थात रात में खा रहा है। तो यहां पर यदि पुण्यकर्म कारण नहीं है, पुण्यकर्म का अभाव कारण नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा कारण नहीं है, तो फिर वजन कैसे बढ़ रहा है? कारण क्या है? अहेतु ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का कारण क्या है? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जो भगवान की लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, या भगवान के शुद्ध भक्त जो कि लादिनी शक्ति को अपने अंदर लिए हैं, तो एक शुद्ध भक्त के अंदर, या जैसे श्रील प्रभुपाद, हम अगर उदाहरण श्रील प्रभुपाद का दें तो श्रील प्रभुपाद मध्यम अधिकारी की भूमिका निभाए। तो मध्यम अधिकारी जो होता है वो अपने स्वयं के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम उन्होंने जागृत किया है उस प्रेम को वो बद्ध जीव को दे सकता है। तो हमारे अंदर, एक बद्ध जीव के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं? जब हम किसी मध्यम अधिकारी के हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उनसे प्राप्त करें, तभी डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के पास इसका कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर कोई सोचे कि मैं डायरेक्टली भगवान कृष्ण से ही भक्ति प्राप्त करूंगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनके पास है ही नहीं। उन्होंने वो पूरा कंट्रोल राइट्स उनके शुद्ध भक्त को दे दिया है, लादिनी शक्ति। इसलिए भक्ति संजायते भक्ति, उस शुद्ध भक्त के अंदर की जो भक्ति है वो जब देना चाहें, वो जब बांटना चाहें, तब प्राप्त होती है। तो अब एक प्रश्न कोई पूछ सकता है, तो वो जो बांटते हैं वो भी तो भगवान के निर्देशन में बांटते होंगे, क्योंकि भगवान के निर्देश के अनुसार तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो शुद्ध भक्त यदि प्रभुपाद भक्ति बांटते हैं तो वो भगवान के निर्देश के अनुसार बांटते होंगे? नहीं, हर चीज वो भगवान के निर्देश के अनुसार करते हैं, परंतु भक्ति बांटने का जो काम है, एक शुद्ध भक्त के भक्ति बांटने का जो काम है वो भगवान से पूछ के नहीं करते। क्योंकि अगर वो भगवान से पूछ के करेंगे तो भगवान तो हमारी अयोग्यता को देखते हुए सबको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति का भंडार है उसका कंट्रोल, कितने मात्रा में वो भक्ति आनी चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है, लेकिन ये कितना बांटेंगे ये भगवान के कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें दोनों है, कंट्रोल अनकंट्रोल दोनों आ गया। तो एक उदाहरण दिया गया है, चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं, कैन डार्कनेस टच सन, अंधकार कभी सूर्य को छू सकता है? कभी नहीं छू सकता अंधकार सूर्य को, कभी नहीं छू सकता। उसी प्रकार से भगवान सूर्य के समान है, इसलिए भगवान कभी दुख पीड़ा ये कभी अनुभव ही नहीं किए, भगवान दुख और पीड़ा को कभी अनुभव नहीं किए, इसलिए हमारा जो दुख और पीड़ा है उसको कौन समझ सकता है? जो भक्त होते हैं वो समझ सकते हैं, इसलिए वो हमें भक्ति दे सकते हैं। तो अब ये प्रश्न कि जो शुद्ध भक्त हैं क्या वो पीड़ा में से गुजरते हैं, या उनके जीवन में जब दुख आते हैं तो वो अपने जीवन में जानबूझकर दुख लाना चाहते हैं ताकि वो बद्ध जीव के दुख का एहसास कर सकें, और जितना उनको बद्ध जीव के दुख का एहसास होगा उतना वो बांटेंगे, उतना वो भक्ति को बांटेंगे, उतना वो भक्ति को बांटेंगे। इसलिए फाइनली चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अभी जानाति का अर्थ क्या है कि वो शुद्ध भक्त जिसने ये पूरे ऑथोराइजेशन और राइट्स ले लिए हैं अपने अंदर अपने ज्यूरिसडिक्शन में किसको शुद्ध भक्ति बांटने को, वो फाइनली भगवान चाहे रोक दे उनको, रोकने की भी कोशिश करें, लेकिन वो शुद्ध भक्त को रोक नहीं सकते इस शुद्ध भक्ति को बांटने से। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि वो एक ऐसे मध्यमधिकारी निर्धारित भगवान के द्वारा, कि भगवान ने उनको भेजा कि कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, इन कलयुग के बद्ध जीवों के और यदि मैं देखूंगा तो मैं किसी को अपने धाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु हे तुम जाओ शुद्ध भक्त, और तुम्हारे पर मैं पूरी राइट्स ऑथोराइजेशन देता हूं कि तुमको जिनको बांटना है ये शुद्ध भक्ति, चाहे वो कितने भी पतित हो, उनको तुम ये शुद्ध कृष्ण भक्ति मेरी बांटो, और तुम जिनको नियुक्त करोगे, तुम जिनको सिलेक्ट करोगे, मैं बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी प्रश्न के, संदेह के उनको अपने धाम बुला लूंगा। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो ये फाइनल कंक्लूजन है आज के श्लोक का, जहां पर भगवान कहते हैं कि वो मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त अभी जानाति, नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा यो माम अभी जानाति, कि जो इस सत्य को जान लेता है वो भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऋग्रह शिक्षाश्रम प्रभु की। हरे कृष्णा। कुछ सूचना इस प्रकार से है, जैसे आप देखियो देखिए।